नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया संघर्ष पर ईंधन आपूर्ति और मुद्रा स्फीति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। सरकार ने पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर घरेलू शुल्क में कटौती की, डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क लगाया। खाड़ी देशों पर बढ़ते खतरे के बीच पश्चिम एशिया में सुरक्षा चिंता बढ़ी, तनाव कम करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी। संसद ने वित्त विधेयक और विनियोग संख्या 2 विधेयक को मंजूरी दी। दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। और भारतीय तीरंदाजों ने एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए राज्यों की तैयारी और योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त वैश्विक तनाव के बीच ईंधन की आपूर्ति और महंगाई पर भी विचार विमर्श होना है। सरकार ने डीजल और विमानन टर्बाइन ईंधन ATF पर निर्यात शुल्क लगाया है और पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया है। इससे पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और उपभोक्ताओं पर पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों का असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच देशों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए डीजल विमानन टर्बाइन ईंधन की घरेलू उपलब्धता को प्राथमिकता देना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत के पास वर्तमान में कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार हैं। ये अगले 2 महीनों के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और LPG तथा PNG की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी पूरी या उससे अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं।
हमारी रिफाइनरीज 100% या उससे भी ज्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ LPG हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 40%। LPG वी हैव अ ह्यूज इंपोर्ट डिपेंडेंसी और इसका 90% जो आ रहा था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ रहा था। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से 25 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है।
पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नागरिकों को सेफली इंडिया वापस लाया गया, रिपेट्रिएट किया गया आफ्टर साइन ऑफ फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द गल्फ एरिया। किसी भी पोर्ट पे, मेजर पोर्ट या अदर देन मेजर पोर्ट पे कोई कंजेशन या भीड़ भाड़ की कोई सूचना नहीं है। सभी जगह पोर्ट का ऑपरेशन संचालन सुचारू रूप से चल रहा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के वैश्विक साझेदारों के साथ बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव खाड़ी क्षेत्र असीम आर महाजन ने आश्वासन दिया कि सरकार खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित देशों के साथ लगातार संपर्क में है। नई दिल्ली में आज मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि LPG के 4 जहाज अब तक होर्मुज जल डमरू मध्य पार कर भारत पहुंच चुके हैं।
4 जहाज हमारे वहां से आ चुके हैं और हम कई सारे खाड़ी के देशों के साथ बात कर रहे हैं ताकि और भी जो हमारे जहाज है वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करके सुरक्षित भारत आए।
ईरान के हमले तेज करने के साथ पश्चिम एशिया में संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों पर खतरा बढ़ गया है। संयुक्त अरब अमीरात में वायु रक्षा प्रणालियों ने आज सुबह ईरान की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 9 ड्रोनों को रोका। इसमें किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुवैत पर भी सीधा हमला हुआ है। सऊदी अरब में रक्षा प्रणालियों ने पूर्वी प्रांत के ऊपर 4 ड्रोनों को रोका। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। इस बीच तनाव कम करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी हैं। एक रिपोर्ट।
खाड़ी देशों के अधिकारियों का कहना है कि बढ़ता सुरक्षा खतरा केवल सैन्य तनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक विकास योजनाओं को लेकर भी गंभीर चिंताओं से जुड़ा हुआ है। आशंका है कि बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों पर हमले निवेशकों के भरोसे को कमजोर कर सकते हैं और खाड़ी देशों में चल रही विजन 2030 जैसी आर्थिक विविधीकरण योजना को प्रभावित कर सकते हैं। ऊर्जा सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। खाड़ी क्षेत्र ऊर्जा प्रतिष्ठान अब भी खतरे में हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के भीतर ओमान कूटनीतिक समाधान की वकालत कर रहा है और 15 सूत्री शांति प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
नमस्ते सुनीता, कैसी हो? आज यहाँ कैसे आना हुआ?
नमस्ते दीदी, आज मेरी बेटी 14 साल की हो गई है, उसी के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ।
बधाई हो, अब गिफ्ट के साथ साथ उसे HPV का टीका भी लगवा दो।
ये कौन सा टीका है दीदी?
ये टीका सर्विकल कैंसर से हमारी बेटियों का बचाव करता है और हमारी सरकार ने इसे 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। मैं वहीं से तो आ रही हूँ अपनी बेटी को टीका लगवा कर।
टीका लगवाने के बाद कोई दिक्कत हुई?
नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम भी आज ही अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UVN पर रजिस्टर कर लो।
धन्यवाद दीदी।
भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvn.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आज 2,38,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इन प्रस्तावों का उद्देश्य रक्षा सेवाओं की क्षमता बढ़ाना है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह स्वीकृति भारतीय सेना की वायु रक्षा ट्रैकिंग प्रणाली, आर्म्ड पियर्सिंग टैंक इम्यूनेशन, उच्च क्षमता के रेडियो रिले, धनुष गन प्रणाली और रनवे एरियल निगरानी प्रणाली के लिए दी गई है। भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम परिवहन विमान की खरीद, S-400 मिसाइल प्रणाली, दूर तक मारक क्षमता वाले विमानों और सुखोई 30 एरो इंजन के ओवरऑल के लिए प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। रक्षा खरीद परिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6,73,000 करोड़ रुपए के 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। भारतीय नौसेना की IOS सागर पहल ने कोच्चि के दक्षिणी नौसेना कमान में गहन बंदरगाह प्रशिक्षण चरण के सफल समापन के साथ क्षेत्रीय समुद्री सहयोग में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह पहल हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक सुरक्षा और क्षमता निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है। रक्षा मंत्रालय ने आज तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल की खरीद और P-8I दीर्घ श्रेणी समुद्री टोहे विमान के निरीक्षण के लिए 858 करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना के लिए 445 करोड़ रुपए की तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की खरीद का अनुबंध रूस के JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। लोकसभा में ऋण शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा फिर से शुरू हुई। विधेयक का उद्देश्य ऋण शोधन अक्षमता दिवालियापन संहिता 2016 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य कंपनियों और व्यक्तियों के बीच प्रक्रियात्मक विलंब और व्याख्या संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने आज लोकसभा में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। ये विधेयक कुछ अधिनियमों में संशोधन करके अपराधों को निर्दिष्ट श्रेणी से निकालने और तर्कसंगत बनाने का प्रयास करता है। इसे जीवन और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विश्वास आधारित शासन को और मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। संसद ने वित्त विधेयक 2026 और विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने आज इस पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा वापस भेज दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके साथ ही बजट प्रक्रिया पूरी हो गई है। वित्त विधेयक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करना है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में विधेयक पेश किया था। विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026-27 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ राशियों के भुगतान अविनियोग को अधिकृत करना है। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
ये आकाशवाणी है। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक विशेष श्रृंखला शुरू कर रहा है। आज केरलम के तिरुवनंतपुरम के बारे में एक रिपोर्ट।
केरलम के तिरुवनंतपुरम विधानसभा क्षेत्र में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां तीनों राजनीतिक मोर्चों NDA, LDF और UDF ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सत्ताधारी LDF समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुधीर कर्मना चुनाव लड़ रहे हैं। UDF ने कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी केरलम के CP जॉन को और NDA ने BJP के कर्मना जयन को उतारा है। BSP के एडवोकेट सेन, SUCI कम्युनिस्ट की ए स्वरूपा और 6 अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 82,000 से अधिक महिलाओं सहित कुल 158,000 से अधिक मतदाता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ शशांक कुमार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस हवाई अड्डे को लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य शून्य कार्बन उत्सर्जन सुविधा, ऊर्जा सक्षम प्रणाली और पर्यावरण अनुकूल हवाई अड्डे का परिचालन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 29 मार्च को दिन के 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 132वीं कड़ी होगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। वीडियो में कहा गया है कि देश में बड़े संकट के कारण लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पत्र सूचना कार्यालय PIP की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को फर्जी बताया है और कहा है कि प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। PIB ने लोगों से ऐसे सनसनीखेज खबरों पर विश्वास न करने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने का आग्रह किया है। बैंकॉक में तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के पहले चरण में भारत ने 10 पदक जीत लिए हैं। भारत ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम में स्वर्ण और पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक अपने नाम किए। भारत ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर पिछले संस्करण के अपने कुल पदकों की संख्या में सुधार किया है। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्रायल गेम्स के तीसरे दिन आज रायपुर में तैराकी, फुटबॉल, वेटलिफ्टिंग और हॉकी के मुकाबले हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए ईंधन आपूर्ति और मुद्रास्फीति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। सरकार ने पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर घरेलू शुल्क में कटौती की। डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क लगाया। खाड़ी देशों पर बढ़ते खतरे के बीच पश्चिम एशिया में सुरक्षा चिंता बढ़ी। तनाव कम करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी। रक्षा अधिकरण परिषद ने रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी। संसद ने वित्त विधेयक और विनियोग संख्या 2 विधेयक को मंजूरी दी। दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। और भारतीय तीरंदाजों ने एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।